इस सूरत को ज़रा रिव्यू कर लेते हैं हम, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सूरत रही है ये सूरत। अगर इसका जिस्ट निकाला जाए, इसका खुलासा बताया जाए, तो इसका खुलासा क्या है, किस चीज़ के गिर्द ये सूरत घूमती है, मरकज़ी इसका मज़मून क्या है कि अल्लाह ही के लिए खालिस होके इबादत करना। और आप ये देख लें, ये मज़मून बार बार आता है और बार बार कहा जा रहा है कि आप अल्लाह ही की इबादत करें, उसी के लिए दीन को खालिस करते हैं। यानी शुरू से आप देख लें, अगर आप शुरू के निकालें, शुरू से इस सूरत को देखें, आपके शुरू से ही इसका मज़मून क्या चला आ रहा है। और इसमें सबसे पहले फिर मुशरिकीन के अकीदे को रद्द किया गया कि जब वो कहते थे कि हम तो बस अल्लाह ही के कुर्ब लेने के लिए इन लोगों को पूछते हैं या इनको हमने औलिया बनाया हुआ। फिर दूसरी जगह रद्द हुआ औलाद बनाने का, कि जो कहते हैं कि हम अल्लाह की मखलूक में से ही उसकी औलाद करतानते हैं, उनका भी रद्द हो गया। यानी अब देखें ना, खालिस किया जा रहा है कि हर तरह का शिर्क छोड़ दो। और जो शिर्क है ये नाशुक्री है अल्लाह की, देता अल्लाह है और तुम जाके दूसरों के आगे माथे टेकते हो, ये सबसे बड़ी नाशुक्री है। तो अगर तुम नाशुक्री करोगे, अल्लाह को परवाह नहीं है तुम्हारी, फिर जाओ, फिर जाओ जाओ जहाँ जाना। हाँ, लेकिन अल्लाह तुम्हारी नाशुक्री से खुश नहीं होता। शुक्र करोगे तो उसको शुक्र पसंद है। फिर उसके बाद हमने इस सूरत में बार बार देखा कि कंपैरिजन हो रहा है, ये बंदा इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं। ये जो हम दुनिया में सोचते हैं ना, सारे ही बराबर हैं, पता नहीं सभी एक जैसे योगन, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। देख लें आप, यहाँ पे जो सदे और क़याम की हालत में रातें गुजारता है, जो अल्लाह से डरता है, जो आखरत से आखरत की सोच से डरता है, अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है, वो और दूसरे में बड़ा फ़र्क है। वो जो नहीं डरता, वो जो गफलत में ज़िंदगी गुजारता है, फिर इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं है। ये सब चीज़ें बताई गई, इससे आपको इल्म की फजीलत भी पता चलती और इससे उसकी भी बात पता चलती कि जो तकवा रखता है उसमें और जो बेपरवाह है उसमें बहुत फ़र्क है अल्लाह के यहाँ। फिर उसके बाद हिजरत के लिए बताया गया कि अगर अल्लाह के दीन पर नहीं चल सकते, उसकी खालिस होके किसी जगह इबादत नहीं कर सकते ना, तो फिर उस जगह को छोड़ दो, ज़रूरत नहीं है तुम्हें फिर वहाँ रहने की। उसके बाद फिर आप देखें आयत नंबर ये 11 और आगे देख लें आप, फिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इबादत को खालिस करने का मुझे हुक्म दिया गया कि आप ये ऐलान कर दें। और हमें सबको बता दिया गया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नाफरमानी करने से डरते थे कि मुझे बड़े दिन का अजाब ना आ जाए, तो फिर हमें कितना डरना चाहिए। फिर उसके बाद फिर तागूत की इबादत से भी, कोई भी ऐसी सरकश कुव्वत जो अल्लाह की इबादत से हटाने वाली हो, वो तागूत है, उसकी इबादत से भी मना कर दिया गया, इज्तनाब करने को कहा गया। और ताहूत हमारा अपना नफ्स भी हो सकता है, याद रखिए कि अगर हमारा नफ्स ही नहीं मानता अल्लाह की इबादत की तरफ आने के लिए, तो वो भी ताहूत है, फिर उसको भी पीछे करके अल्लाह की तरफ आना है। ताहूत सिर्फ कोई बाहर वाली कुव्वतें नहीं है, ज़रूरी है कि कोई हम ढूंढने लगे फलां ताहूत है फलां, नहीं है, तो हमारे अपने अंदर ताहूत बैठे हैं। फिर उसके बाद हमें बड़ी अच्छी तरह समझा दिया गया कि ये बात समझ जाओ कि क़यामत के दिन कोई बचा नहीं सकेगा, जिस पे अज़ाब की बात साबित हो गई है नबी, आप भी नहीं उसको बचा सकते, तो फिर तौहीद तो खुद ही खालिस हो गई ना, जब सारे सहारे ख़त्म हो गए। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं सहारा बन सकते कि वो बचा ले वहाँ पे, अच्छा अल्लाह की औलाद बना के नऊज़ु बिल्लाह सोचना कि वो वहाँ पे बचा लेगी, वो भी नहीं बचा सकती। फिर उसके बाद बता दिया कि ये जो तुमने जिनको अल्लाह के औलिया बनाया हुआ कि ये हमें अल्लाह का कुर्ब देंगे, वो भी नहीं बचा सकते वहाँ पे। यानी देख लें आप, सब की नफ़ी की जा रही है, तागूत भी वहाँ पे नहीं काम आ सकता। तो ये अब खालिस किया जा रहा है बंदे को कि खालिस हो जा अल्लाह की इबादत के लिए, सिर्फ एक अल्लाह हो तेरी इबादत में और कोई नहीं। फिर हम देखते हैं दिलों की सख्ती की बात, एक वो दिल है जो इस्लाम के लिए खुल गया हुआ है, और एक वो दिल है जो अल्लाह की याद से ही सख्त हो गया हुआ है। تو میں نے آپ کو دل کی سختی کی علامات بھی بتائی تھی. اور پھر دوسری بات ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم بہترین کلام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اس کو چھوڑ کے اور کلاموں کے پیچھے جائیں اور علوم کے پیچھے پڑے ہوں, یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں حاصل کرنے, لیکن اگر ہم اور چیزوں کو اہمیت زیادہ دیں اور ان کے لیے تو ہم اپنے دن رات ایک کر رہے ہوں اور اس کو ہمارے فرصت ہی نہیں ہے اس کی طرف آنے کی. ابھی ریسنٹلی کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری صبح 9 بجے سے لے کے 7 بجے تک جاب ہوتی ہے اور یہ پانچوں دن جاب ہوتی ہے, اور سیٹرڈے کو میں کالج جاتی ہوں, وہاں پہ کلاسیں لیتی ہوں اور میں کچھ مطلب سیکھ رہی ہوں کوئی ڈگری لینے کے لیے. تو میں جب بھی ایسے کسی لوگوں کو دیکھتی ہوں, ان کی باتیں سنتی ہوں, تو یہی سوچتی ہوں کہ دیکھو لوگ دنیا کے لیے کتنی محنت کریں. یہ نہیں کہ کوئی ان کی غلط بات ہے, ان کے اوپر الزام نہیں دے رہی, لیکن بس ایک کمپیریزن خود بہت دل میں آنے لگتا ہے نا کہ اگر ہم کسی کو کبھی کہہ دیں کہ تم دیکھو اس طرح اللہ کے کلام کے لیے وقت نکالو, تو لوگ کبھی نہیں نکالتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جو اپنا دن اور رات لگا رہے ہیں پیسوں کے لیے, جو بھی ان کی مجبوری ہوگی یا ظاہر ہے, لیکن یعنی دنیا کمانے کے لیے کتنی محنتیں لگ رہی ہیں, اور جبکہ دوسری طرف اللہ کے کلام کے لیے محنت کرنے کا تو تصور بھی ختم ہو چکا ہے. اس میں پھر ہم کہتے ہیں کیسے کریں. یہ بیسٹ کلام ہے, بیسٹ. اور یہ اس کی پھر بتایا گیا کہ ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں نا, ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کے, تو اب کیا, اور دل نرم ہو جاتے ہیں. اب ایک سوال آیا تھا کہ کیا ہمیشہ جب بھی پڑھیں گے تو اس طرح ہونا چاہیے یا کبھی ہو یا کبھی نہیں بھی ہو سکتا. تو دیکھیں, ایک تو بات ذہن میں رکھیے کہ ظاہر ہے اگر آپ ایک مثال کے طور پہ آپ آیات حفظ کر رہے ہیں تو آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں تو 100 دفعہ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے ہر دفعہ ہی رونگ پہ کھڑے ہو جائیں ہر دفعہ. یہ کوئی یعنی آرٹیفیشل بات نہیں ہے, مگر ہاں جب بھی پڑھیں قرآن پاک کھولا تو ہر دفعہ ان آیات سے گزرے جب آپ دل پہ لیتے ہیں نا ان کو, تو واقعی دل نرم بھی ہو جاتا ہے, رونگ پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو لیکن ایمان کا لیول بھی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. کبھی لیول بہت ڈاؤن ہوتا ہے تو اتنا اثر ہی نہیں ہوتا, کبھی ایمان کا لیول بہت بڑا ہوتا ہے تو اثر ہوتا ہے, زیادہ اثر ہوتا ہے. کبھی لاسٹ ٹائم آپ نے وہی آیات پڑھی ہوتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے, اگلی دفعہ وہ آیات پڑھتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں. جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب انہوں نے سنا کہ فلاں فلاں لوگوں نے قرآن سنا اور ان کا یہ حال ہو گیا قرآن سن کے, تو فرماتے ہیں کہ جب ہم پہ بھی قرآن شروع میں اترا تھا اور ہم سنتے تھے تو ہمارا بھی یہی حال تھا, پھر ہمارے دل سخت ہو گئے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ظاہر ہے جب بار 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 پڑھتے ہیں وہی والی آیات, تو ظاہر ہے اتنی شدت سے نہیں وہ ہٹ کرتی ہیں جیسے پہلی دفعہ جب آپ نے سنی ہوتی ہیں پڑھی ہوتی ہیں تو اس وقت ہوتی ہیں. تو لیکن یہ بھی نہیں ہوتا کہ پھر پہلی دفعہ ہی صرف وہ, اس کے بعد بالکل ہی بے اثر ہو گئے, ایسے نہیں ہوتا. ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ طرح سے آیات اثر کرتی ہیں. آپ دیکھ لیں جو لوگ پچھلے کورس میں بھی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے یہی آیات پڑھی, اس وقت کچھ طرح سے اثر لیا, اب دوبارہ پڑھ رہے ہیں کسی اور طرح سے اثر ہو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے اس طرح سے کہ انسان وقت, حالات, اس کا دل کس طرح سے ہے, کس حالت میں ہے اس وقت, اس کے مطابق اثر ہوتا ہے آیات کا. اس کے بعد شرک کے لیے خوبصورت مثال دی گئی, وہ جو ایک شخص کا غلام اور جو بہت ساروں کا ایک غلام ہو تو دونوں برابر نہیں ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات فرما دی گئی کہ انک میتن و انہم میتون, تاکہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کام آ سکتے ہیں, وہ زندہ ہیں یا وہ اپنی قبر میں سن کے ہمارے یہاں پہ دنیا کے کام بنا سکتے ہیں یا آخرت کے بنا سکتے ہیں, تو ان کو بھی موت ہے. یہ اس میں بھی یعنی ایک طرح سے شرک کی جڑ کاٹ دی گئی اس صورت میں. کسی نے توحید سیکھنی ہو تو اس صورت سے سیکھ سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے پھر یہ بھی دیکھا جو اپنے لاسٹ لیسن میں تھا کہ اللہ ہی کافی اپنے بندے کے لیے, حسبی اللہ. یہ بہت ہی پیاری بات ہے, اس میں بھی شرک کٹ جاتا ہے کہ जब इंसान सारे ही सहारे काट दे कि कोई और सहारा बन ही नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, हस्बी अल्लाह, यानी और मुझे किसी की भी नहीं ज़रूरत, सिर्फ वही काफ़ी है, हस्बी का मतलब ये है, तो इसमें भी शिर्क की नफ़ी हो गई। फिर आप उसके बाद देखते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो आयात पढ़ी थी सिफारिश का जो अकीदा है उसमें भी बता दिया गया कि कुल लिल्लाहि शफ़ातु जमीआ, अल्लाह ही के लिए शफ़ात सारी की सारी। तो उसमें भी अब आप ये जो अकीदा होता है ना लोगों को दूसरों को पूजने का, चाहे वो जिंदा हों चाहे वो मर चुके हैं, चाहे वो कोई बोते हैं चाहे वो कोई भी हैं, अक्सरियत के पीछे इंसान ये सोच के उनको पूछता है इस अकीदे को लेकर कि ये आखरत में हमारे लिए सिफारिश करेंगे, वहाँ हमें बचा लेंगे, ये पीर ये फलां ये जो भी हैं ये आखरत में हमारे काम आने वाले हैं, आज हम जो मर्जी कर लेंगे ना कि कुछ भी कर लो, आज कोई भी अपने काले करतूत कर लो उसके बाद फिक्र की ज़रूरत नहीं, ये जो है हमारे सिफारशी वहाँ पे। तो इसका भी अकीदे को, इस अकीदे को काट दिया गया, ये भी शिर्क को ख़त्म करने वाली चीज़ है ना। और उसके बाद फिर हम वही देखते हैं जो हमने एक अल्लाह की तरफ पलटने की बात देखी कि माफ़ी मांग के एक अल्लाह के बन जाओ बस, ये ना सोचो अगर गुनाह कर भी लिए हैं तो बजाय इधर उधर के सहारे लेने के कि वो बचाएगा वो बचाएगा, तुम अल्लाह की तरफ ही क्यों नहीं आ जाते। तो जो सबसे पहली बात जहन में आती है, इसलिए नहीं आते कि अब हमने तो इतना बुरा कर दिया है अब कहाँ हमें माफ़ी मिलेगी, नहीं, फरमाया कि नहीं अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। फिर उसके बाद अब ये ज़बरदस्त आयात जो आखरत के बारे में हमने पढ़ी है कि किस तरह से इंसान उस दिन जन्नत और जहन्नम की तरफ ले जाए जाएंगे, और जहन्नम वालों को भी क्या चीज़ है जो कही जाएगी फरिश्तों की तरफ से, इससे बड़ा क्लियरली ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से काम हैं जो इस दुनिया में करने के हैं, जो करके यहाँ से जाया जाए ताकि वहाँ पे ये बात ना हमें सुननी पड़े कि अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। समझता है, यहाँ पे इन आयात को पढ़ना और डरते रहना उस दिन की मुलाकात से ये ज़रूरी है अगर वहाँ पे निजात चाहते हैं, क्योंकि यही बात वो कहेंगे। और ये नहीं कह रहे तुमने वहाँ उस वक़्त नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने उस वक़्त रोज़े क्यों नहीं रखे, तुमने उस वक़्त ये काम क्यों किया कि आज तुम यहाँ पहुँच गए, तुम शराब क्यों पीते थे यहाँ। एक एक मेन पॉइंट है जो बेस है ना, बेस उसकी बात की गई कि अल्लाह की आयात क्यों ना पढ़ी तुमने जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी, यानी ये कुरान आ गया है तो यही हमारी इसलाह करेगा, इसके सिवा इसलाह का कोई और तरीका नहीं है। अगर आप सोचते हैं ना कि फलां 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 चीज़ है वो उसकी वजह से हम फिक्स हो जाएंगे, अगर 24 पारे पढ़ के भी अगर हम नहीं अभी तक फिक्स हुए ना तो ये ना सोचें कि अब कोई और तरीका करें, इसलिए कि कोई और तरीका नहीं है, यही तरीका है, इसी से हमें निजात मिलनी है, इसी से हमें हिदायत मिलनी है, इसी ने हमें सीधा करना है, इसके सिवा कोई चीज़ नहीं है। वरना यहाँ पे वो फरिश्ते कहते कि इसके ये तुम क्यों ना करके आए, उन्होंने तिलावत कुरान यानी किताब जो रसूल के ज़रिए पहुंची है उसकी बात की गई यहाँ पे इस आयत के अंदर। तो इससे हमें ये बात अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि कुरान के अलावा हमारे पास कोई और तरीका है ही नहीं, कोई और रास्ता है ही नहीं, बस चाहे एक दफ़ा नहीं तो दो दफ़ा, चार दफ़ा, दस दफ़ा, सारी ज़िंदगी इसको पढ़ते रहें, इसी को सीखते रहें, इसी के अंदर अपने आप को खपा दें इस तरह कि ये हमें एक ना एक दिन ट्रांसफॉर्म करते। ये वो कुरान है, ये वो आयात हैं कि अगर पहाड़ पे भी नाजिल हो जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। ठीक है, कहने को हम ये चलो कहते हम पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं कि हमें असर नहीं होता, लेकिन तब भी यही कुरान बदलेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो सोचिएगा भी नहीं कहीं और जाने का इसको छोड़ के कि फलां जगह पे फलां किताबों में फलां जगह नहीं, कुरान, कुरान की इस रस्सी को थाम ले, इसको नहीं छोड़ना। और जो लोग समझते हैं इसको एक कोर्स सिर्फ, कि बस एक कोर्स है, हमने कोर्स कर लिया, अब कोर्स खत्म हो गया, सर्टिफिकेट ले लिया, अब घर बैठ जाओ, अब तो कोई जरूरत नहीं है, पढ़ के तो देख लिया हमने कि क्या है। अगर कोई ये बंदा समझता है ना, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। इसलिए कि एक दफा पढ़ने से, एक दफा इससे गो थ्रू होने से, ये हम एक तरह से गो थ्रू हो रहे हैं, हम क्या समझते हैं कि हम टोटली फिक्स हो चुके हैं। यानी अभी तक हमने समझ लें कि यानी 2/3 तो कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। क्या हमारी इसी तरह 2/3 हमारा कैरेक्टर सही हो गया है, हमारी इबादत, हमारे आमाल, हमारी जिंदगी भी क्या 2/3 सही हो चुकी है? नहीं हुई ना, अभी बहुत ज्यादा इसलाह की जरूरत है ना। क्या आप ये समझते हैं? अगर आप ये समझते हैं तो फिर जब तक धुलाई हो के बिल्कुल पाक साफ नहीं हो जाते, जब तक अपने आप को बिल्कुल सही समत में नहीं डाल लेते, जब तक जिंदगी बिल्कुल सीधी नहीं हो जाती, तब तक इस कुरान को नहीं छोड़ना। और सीधी हो भी जाए तब भी उस रास्ते पे रहने के लिए भी, एक तो होता है ना रास्ते पे आ जाना, सीधे हो जाना, एक सीधे रहना, वो भी ये कुरान ही करेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुम्हारे पर कुरान आयात तुम्हारे रब की तिलावत की हो और तुम्हें इस दिन से डराया हो। तो दूसरी बात क्या पता चलती है? आखरत की मुलाकात, इसको याद रखना, इस दिन का जो खौफ है और इस दिन की जो तैयारी है, खौफ होगा तो तैयारी भी करेंगे ना, तो इस दिन की जो तैयारी है, इस दिन के जो अहवाल हैं हमारे सामने होने चाहिए, इसकी तैयारी में लगे रहना चाहिए। और ये हमें बार बार भूल जाता है कि हमने तैयारी करनी है। इसके लिए फिर क्या ज़रूरी है कि हम फिर इस कुरान की तरफ आएं, क्योंकि ये याद दहानी कराता है। आप देखें कुरान में कोई सूरत ऐसी नहीं है जिसके अंदर के आपको फिर वापसी की याद ना करवाई जाए, आपको आखरत नहीं याद कराई जाए। हर जगह किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हर पारे में आप देख लें कि आपको आखरत, वापसी, अल्लाह की तरफ लौटना, इस इन सब चीज़ों की रिमाइंडर्स मिलते हैं। अगर सूरत नहीं तो कह सकते हैं हर पारे में रिमाइंडर्स मिलते हैं। तो ये हमने बात कर ली, और उसके बाद हमने जन्नत की देखी कि वहाँ पे भी ग्रोहों की शक्ल में लोग दाखिल होंगे, और वो ग्रोह कोई अंबिया का, कोई औलिया अल्लाह का, कोई शुहदा का, कोई सालेहीन का, कोई और का, इसके अलावा जैसे जैसे मैंने आपको बताया आमाल होंगे उसके मुताबिक भी ग्रोह होंगे। तो इस सिलसिले में एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, ये कि इमाम गजाली कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नेकियां तकसीम की हुई हैं, ठीक है, नेकियों को अल्लाह ताला ने तकसीम किया हुआ है। यानी कुछ लोगों में तकसीम इस तरह से कर दी है कि कुछ नेकियां किसी के लिए आसान हैं, कुछ और किसी और के लिए आसान है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी मिसाल के तौर पर अब आप देखें सहाबा की ज़िंदगी से, कुछ सहाबा ऐसे हैं कि मसलन आप हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम मैं लेती हूँ, आपके जहन में क्या आता है? एकदम पहली बात क्या आती है? जंगजू, ठीक है, वॉर टैक्टिक्स के अंदर माहिर और बहुत ज़बरदस्त लड़ने वाले, राइट। फिर अगर मैं बोलती हूँ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपके जहन में क्या आता है? बहुत ज़्यादा सखी, बहुत ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में देने वाले। फिर इसी तरह और सहाबा भी हैं, उनके भी आपको किसी सहाबी से कुछ जहन में आएगा, किसी से कुछ जहन में, क्योंकि वो उस ख़ास नेकी में बहुत आगे जाने वाले थे। मसलन अबू हुरैरा हैं, अब उनसे जहन में क्या आता है? बहुत ज़्यादा अहादीस के रावी, बहुत ज़्यादा इल्म लेने वाले, अपनी ज़िंदगी को डेडिकेट कर देने वाले इल्म के लिए। तो हर सहाबी हर फील्ड में ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा आगे था, कोई किसी का एक फील्ड होता था जिसमें वो बहुत आगे होता था। तो यानी कुछ के लिए कुछ नेकियां आसान है, आप जैसे हज़रत हसन की हमने बात पढ़ी थी, उनके लिए जिहाद में निकलना आसान नहीं था। वो अपनी शायरी के अंदर आपको जहन में एकदम आता है शायरी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करना, तो इससे हमें ये बात मालूम होती है कि कुछ नेकियां जो एक के लिए आसान है वो दूसरे के लिए हो सकता है मुश्किल हो, वो दूसरे के लिए कोई और आसान हो नेकी। तो जैसे मैंने अब आपको मिसाल दी, बाज सहाबा रोजे से बड़ी मोहब्बत करते थे, हर दूसरे रोज रोजा रखते थे। बाज दूसरे रोजे इसलिए नहीं रखते थे कि उनको नमाज का इतना शौक था और रोजा रख के वो उतनी नमाज नहीं पढ़ पाते थे। जैसे हजरत इब्ने मसूद है, वो ज्यादा रोजे नहीं रखते थे और रोजा रख लेते थे तो कुरान को इतना वक्त नहीं दे पाते थे, इतना नहीं पढ़ पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो इस वजह से वो ज्यादा नफली रोजे नहीं रखते थे। इसी तरह किसी के लिए सदका करना आसान है, किसी के लिए दावा का काम करना आसान है, किसी के लिए नमाजें नफली पढ़ना बहुत आसान है, किसी के लिए रोजे आपके इल्म से आसान हो सकते हैं। तो आपको मैं ये कहूंगी कि आप चेक करें आपके लिए कौन सी नेकी आसान है, किसमें आपका दिल लगता है, उस नेकी को बस पकड़ लें आप। हो सकता है हम उसी ग्रोह के अंदर जन्नत में चले जाएं, मसलन कोई दावा करने वालों का ग्रोह, उसमें हम भी शामिल हो जाएं। तो किसी ग्रोह में तो हम अपने आप को शामिल करें ना, इतने सारे ग्रुप्स हैं जो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, हम अपने आप को किस ग्रुप में देखते हैं, या किसी में भी नहीं देखते, कोई भी नहीं हमारी स्पेशलिटी, नहीं कोई ना कोई तो होनी चाहिए। कोई एक को पकड़ के जिसमें भी आपका शौक लगता है, जिसमें भी आपका जी लगता है। अब मसलन है मेरा पढ़ाने में मसलन जी लगता है, तो अब मैं पढ़ा पढ़ा के भी या पढ़ पढ़ के भी थकती नहीं। क्यों नहीं थकती? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वजह क्या है? वजह ये है कि वो मेरा एक यानी पैशन है। अब जो आपका शौक है ना, उसके अंदर फिर आप थकते नहीं, वो फिर आपको काम नहीं लगता कि आए मुसीबत अब फिर करना पड़ गया, आए फिर मुझे क्लास तैयार करने आए, फिर अब मुझे ये, फिर ये नहीं होता। फिर आप उस काम को दिल लगा के करते हैं, शौक से करते हैं, उससे कुताते नहीं हैं, उससे तकते नहीं हैं, उसके अंदर मेहनत करते हैं। तो इसी तरह आप भी फाइंड आउट करें कौन सा है वो काम जिसके अंदर आप समझते हैं कि ये काम ना मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, या ये काम है जो मेरा बड़ा दिल लगता है, इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। वो लिखने का काम हो सकता है, वो कोई बोलने का काम हो सकता है, वो कोई और ऐसी इबादत हो सकती है जो कि आपको मतलब उसमें आपको आसानी भी लगती है और आपको शौक भी आता है उसको करने का। वो तहज्जुद हो सकती है, वो रोज़े कसरत से रखना हो सकता है, वो कुरान पाक की तिलावत करना हो सकता है, वो हिफ्ज़ करना हो सकता है, वो जो भी है, जस्ट फाइंड आउट, फाइंड आउट करें ताकि आप उस ग्रोह में शामिल हो सके। यानी हमने इस माइंडसेट के साथ ये काम करना है, अपनी यानी अपनी शौक की चीज़ को ढूंढना है कि मैं उस ग्रोह में अपने आप को शामिल करना चाहती हूँ। चलो जब सारे जा रहे होंगे, कम से कम मैं किसी में तो अपने आप को सोच सकती हूँ कि हाँ भाई मैं इसमें हूँगी। जैसे मैंने आपको सहाबा कराम का बताया, तो अब ये नहीं कि कोई दूसरे वो नमाज नहीं पढ़ते थे या वो नहीं, दूसरा कोई और नहीं काम करते थे, वो दूसरे काम भी करते थे, फराइज पूरे करते थे, वो दूसरे नफाफिल भी कभी करते थे, लेकिन जो उनकी महारत थी या जो उनकी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट चीज नजर आती है, वो कोई एक नेकी होती थी जो प्रोमिनेंट है। तो हमारी प्रोमिनेंट नेकी वो क्या हो, ये सोच लें, क्या मैं चाहती हूं कि मेरी हो। तो उस तरह से अपने आप को तैयार फिर करें। कई तकवा वाले बहुत मुत्तकी हैं, उस तरह से भी हो सकता है। तो बेशुमार फील्ड्स हैं, कोई सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का नहीं, बेशुमार फील्ड्स हैं। कई लोग हैं उनको कमाते भी हैं, सदका करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो सदके पे सदका किए जाते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। और आपको जैसे बताया कि कई लोगों के लिए सुभान अल्लाह एक नहीं, एक से ज्यादा जन्नत के दरवाजे खुले होंगे, सुभान अल्लाह। अब जब एक से ज्यादा जन्नत के दरवाजे खुले होंगे तो जिससे मर्जी, यानी ये भी उनका ओनर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक से ज़्यादा दरवाज़ा खुला हो, तो हम एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने लिए यानी महारत करें और उनको बहुत ज़्यादा करें कि हमारी पूरी ज़िंदगी पे वो छा जाएं वो नेकियां। तो एक से ज़्यादा दरवाज़ों से हमें पुकारा जाएगा फिर, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पुकारा जा रहा है। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, तो अब हमें समझ नहीं आती कि उनकी कौन सी वाली बात सोचें। इस तरफ भी बहुत हैं, उस तरफ भी बहुत हैं, उस तरफ भी कितने सारे फील्ड्स हैं जिनमें वो बहुत आगे हैं। तो उनको हर एक दरवाजे से ही पुकारा जाने होगा वहां पे, और कैसे उनके लिए दरवाजे पहले से ही खोल के रखे गए होंगे जन्नत के दाखिल हो जाएं इसमें से, एक लम्हे का भी वेट ना हो। हम नहीं चाहेंगे देखें बाहर अगर धूप हो ना, धूप हो तो या बहुत ज्यादा सर्दी हो, तो आप अपने मेहमान के लिए कैसे इंतजार करते हैं कि मेहमान का पता चल जाए कि वो करीब पहुंच गया, तो आप पहले ही दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाते हैं कि उसको ज़्यादा धूप में खड़ा ना होना पड़े या सर्दी में ज़्यादा देर इंतज़ार भी ना करना पड़े, खोल के खड़े हो जाओ। तो एक इस्तकबाल के लिए भी होता है, लेकिन क़यामत के दिन जन्नत के बाहर तो सारी हौलनाकियाँ ही हैं, कहीं पुल से रात है, कहीं मीज़ान है, कहीं अंधेरे हैं, अल्लाह अकबर, कहीं एक मसले हैं, कहीं दूसरे मसले हैं, लेकिन सलामती सिर्फ जन्नत के अंदर है। जो जन्नत के अंदर स्टेप इन कर जाए उसके लिए सलामती, उससे बाहर बाहर सलामती नहीं है अभी। इसीलिए हज़रत उमर ने फरमाया ना कि मेरा एक कदम जन्नत के अंदर हो और एक बाहर हो तो तब भी मैं नहीं समझता कि मैं सेफ हूँ। यानी बाहर होने का मतलब ये कि अभी भी आप सेफ नहीं हैं, तो जब तक एंट्री ना मिल जाए, तो उन्होंने खोल के इसीलिए रखे होंगे कि लोग जल्दी से दाखिल हो जाएं। और देखें इतने चौड़े दरवाजे हैं, सारे भरे हुए हैं, अब लोग जौक दर जौक अंदर जा रहे हैं, ज़रा देर के लिए भी उनको बाहर ना खड़ा रहना पड़े, क़यामत की हौलनाकियों में ना रहना पड़े, तो जल्दी जल्दी अंदर आ जाएं वो। तो सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए जिनके लिए जन्नत के दरवाजे पहले से खुले हों और ज़रा देर का भी इंतज़ार ना उनको करना पड़े। और यहाँ पे फिर हमने वो दुआ भी देखी है जो वो जन्नती वो दुआ करेंगे उस दिन जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसी तरह एक और दुआ भी है, जैसे आपको पता है कि जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तो वो भी दुआ ज़ाहिर एक है कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी यहाँ जैसे हमने पढ़ा। तो सारी ज़िंदगी के रास्ते में याद रखिए, यानी क्या उनका मकसद कहने का है कि दुनिया में जितनी उनकी दुनिया की ज़िंदगी थी उसमें भी कितने मरहले आए, कितनी तरह से डिस्ट्रैक्शंस और वसवास शैतान के और फितने कितने आए, लेकिन अल्लाह ही था जिसने हमें थामे रखा और हमें हिदायत देता चला गया। और फिर उसके बाद क़यामत की हौलनाकियों में से भी हिदायत क्या है, राह दिखाना ना, राह दिखा दिखा के हमें पहुंचा दिया यहाँ जन्नत तक। तो ये वाकई सिर्फ अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो किसी को हिदायत दे के और वहाँ जन्नत तक पहुंचा दे, तो फिर वो अल्लाह ही की तारीफ करेंगे कि उसने हमारे लिए ये सारा कर दिया, वरना हम तो खुद नहीं रा पाने वाले थे, हम तो खुद नहीं यहाँ पहुँच सकते थे। और फिर सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, फरिश्ते भी जिन मैटर्स के अंदर यानी झगड़ते थे कि कफ़ारा किस में है, गुनाहों का कफ़ारा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम हदीस बताई थी कि गुनाहों के कफ़ारे के बारे में उनके अंदर इख्तलाफ हो रहा था और उसके अंदर बहस कर रहे थे, तो या और चीज़ों में वो बहस करते हैं कि और बातों के अंदर फरिश्ते, तो उनके दरमियान भी फैसला हो गया आपके जो भी उनकी इख्तलाफी मसाइल थे, अब उनको भी क्लियर हो गई सारी बातें, उनको भी सब समझ आ गई सारी बातों की। और वो भी कहते हैं अल्लाह ही की तारीफ जो रब है तमाम जहानों का, और हर चीज़ पुकार उठेगी। देखें जन्नत भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, फरिश्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, यानी सारी जितनी भी वहाँ पे मखलूक है सब अल्लाह ही की तारीफ बयान कर रही है, और शुरू भी अल्लाह की तारीफ से है और इख्तिताम भी अल्लाह की तारीफ पे ही। देखें अब सारा एंड जो हो रहा है, जितने सारे फैसले हो गए, ये भी अल्लाह ही की तारीफ के ऊपर। और वाकई अगर हम अपने आप को भी सोचें, मैं तो ज़रूर ये बात सोचती हूँ कि अगर मैं जन्नत में पहुँच गई, अल्लाह ही पहुँचाने वाला, अगर मैं जन्नत में पहुँच गई तो मुझे ऐसे फील होता है कि ये बात मैं कह रही होंगी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, क्योंकि मैं अपनी तौफीक से या अपनी ताकत से या अपनी किसी भी चीज़ से किसी भी काम से अपने मैं नहीं कम अज़ कम पहुँच सकती थी, या अल्लाह ही है जिसने मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए ट्रू है, जैसे ये मैं बोल रही हूँ अगर मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ तो वाकई हर इंसान अल्लाह की توفیق ہے کہ وہ وہاں پہنچ جائے اس جنت تک, اللہ ہی کی تعریف ہے اس کے اندر. تو ان دا اینڈ کنکلوژن میں بھی اتنی پیارے طرح سے یہ سورت کنکلوڈ ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں جنت کے باسیوں میں سے بنائے, اور اللہ ہمیں جہنم کی ہوا بھی نہ لگے, اور یہ ہولناک مناظر جہنم کے بھی نہ ہم کبھی دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے, کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.